प्रिय मित्रों नमस्कार। afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं। मित्रों आज 26 सितंबर 2017 है और आज के लिए मैंने जिस विषय का चुनाव किया है इनफैक्ट उसका चुनाव कल ही किया जा चुका है। विषय है कला से जुड़ाओ और आज उसी के अगले भाग पर हम लोग कुछ बातचीत करेंगे और संभवतः यह उसका अंतिम भाग भी हो सकता है। मुझे यकीन है कि कल जो कुछ भी बातें मैंने आपके साथ शेयर की थी उन पर जरूर आप लोगों ने अपने अपने लिहाज से विचार किया होगा, उसके बारे में सोचा होगा और आप लोगों में से बहुत से ऐसे तो ऑलरेडी होंगे जिन्हें कला से बहुत ज्यादा प्रेम है, कला से जुड़ाव है। यहां मैं एक बात और बता दूं जो कल मुझसे मिस हो गया था और वो ये कि जब हम कला के बारे में बात करते हैं ना तो कल मैंने कुछ कलाएं बताई आपको, स्थापत्य कला, म्यूजिक, डांस, राइटिंग, स्कल्पचर, पेंटिंग्स, ये सारी कलाओं के बारे में बताई। होता क्या है कि हमारे दिमाग में कुछ धारणाएं बन जाती हैं और जब हम इनके बारे में बात करते हैं ना तो हमारे दिमाग से लोक कलाएं बिल्कुल गायब हो जाती हैं। जैसे जब हम पेंटिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में प्रदर्शनियां आती हैं, फिर हम भूल जाते हैं कि लोक जीवन में भी तो इस तरह की पेंटिंग्स होती हैं। और पेंटिंग का मतलब ये नहीं कि आप कैनवास पर फिर कुची और वो पेपर और रंग लेकर के चित्र बना रहे हैं, वो भी तो पेंटिंग है जो हमारे गांव की महिलाएं दीवालों पर करती हैं। रंगोली भी कहीं ना कहीं अलग तरह की पेंटिंग है, ये भी पेंटिंग के हिस्से हैं। ठीक इसी तरह से जब हम म्यूजिक और डांस की बात करते हैं तो हम लोक कलाओं को एक तरीके से भूल से जाते हैं। मुझे याद है कि बचपन में हमारे यहां जो जमींदार थे उनके यहां कृष्ण का मंदिर था, घर के अंदर ही मंदिर बनाया हुआ था लेकिन वो सेपरेट जैसा भी था। रात में लगभग 7:30-8 बजे रोज वहां 1 घंटे का कीर्तन होता था लेकिन पूरी पब्लिक उसमें नहीं आती थी, कुछ लोग होते थे 8-10 लोग वही कीर्तन में आते थे। तो हम लोग भी कभी कभी चले जाया करते थे और बड़ा आनंद आता था। देखिए कीर्तन में कोई बहुत म्यूजिक नहीं होता था, बस ढोलक, ढोल, मजीरा और ज्यादा से ज्यादा हारमोनियम, वो भी कभी कभी जब वो हारमोनियम बजाने वाले आ जाए तो। अदरवाइज ढोल और मजीरा ये दो इंस्ट्रूमेंट ही होते थे और कीर्तन होता था और खूब रचता था कीर्तन, खूब जमता था और आनंद लेते थे। तो ये कीर्तन भजन भी कहीं ना कहीं म्यूजिक, डांस, इन सब से ही संबंधित हैं। इन्हें भी आप कला ही मान करके चलें। आप घर को सजा रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं कला है, जैसा मैंने कहा रंगोली बना रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं कला है, दीवालों को रंग रहे हैं, सजा रहे हैं, लीप पोत रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कला के ही रूप है। तो थोड़ा सा इसे विस्तार देना होगा और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो लोक जीवन है इस दृष्टि से बहुत ही समृद्ध जीवन रहा है और इनफैक्ट अभी भी काफी कुछ है। तो मित्रों अब मैं उसके थोड़े से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर आता हूं। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इनफैक्ट जब हम कलाकार नहीं होते और विशुद्ध रूप से कला प्रेमी होते हैं, हमें न गाना आता है, न बजाना आता है, न नाचना आता है, न लिखना आता है, न कब क्या कहते कूची चलानी आती, हम कुछ नहीं जानते, न हथौड़ी छैनी लेकर के हम पत्थरों पर कुछ उकेर सकते हैं। ठीक है हम विशुद्ध रूप से कला प्रेमी हैं, मुझे पेंटिंग देखनी अच्छी लगती है मैं पेंटिंग के एग्जीबिशन में चला जाता हूं, डांस अच्छा लगता है वो प्रोग्राम देखता हूं, लिटरेचर पढ़ता हूं या जो कुछ भी, मतलब मैं का मतलब आप सबसे ही है, जो कुछ भी मैं करता हूं लेकिन मुझे अच्छा लगता है। तो मित्रों मैं यहां एक थोड़ी सी अलग बात आपसे करने जा रहा हूं और वो ये कि याद रखिए कि जब मैं कला प्रेमी होता हूं तो कहीं ना कहीं इनफैक्ट कलाकार भी हो जाता हूं। अब देखिए ये बात सामान्य तौर पर समझ में नहीं आती है, ये कैसे हो सकता है कि मैं कला प्रेमी हूं, कला से मुझे प्रेम है लेकिन मैं कलाकार भी हूं, तो फिर मैं कलाकार क्यों नहीं हूं? यही सच पूछे तो कला का सबसे जबरदस्त सकारात्मक प्रभाव है और इसका प्रभाव हमारी चेतना पर भी है, हमारे विचारों पर भी है, हमारी भावनाओं पर भी है और हमारे व्यक्तित्व पर भी है, क्योंकि ये जो कला प्रियता है ये हमें अंदर से कहीं ना कहीं क्रिएट करती है। और सच पूछे तो वो हमें तभी क्रिएट करती है जब हम कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं, अदरवाइज देखिए हम अपने अंदर से कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। हमारा जब दिमाग कुछ क्रिएट करता है, कुछ रचता है, तब हम अपने आप जो हमारा व्यक्तित्व है, हमारे जो विचार हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो कल्पनाएं हैं, वो खुद रचने लगती हैं, वहां से क्रिएशन हो जाता है। अब बात यह अलग है कि वो क्रिएशन कहीं दिखाई नहीं देता, राइटिंग के रूप में दिखाई नहीं देगा, किसी पेंटिंग के रूप में दिखाई नहीं देगा, वो नहीं दिखाई देगा। तो वो हमारा जो क्रिएशन होता है वो अनुभव के स्तर तक सीमित रह जाता है, लेकिन वो बहुत बड़ी बात होती है। यानी कि किसी भी कलाकृति का जो एक जबरदस्त सकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना चाहिए वो इसी से ही पड़ जाता है कि हम अनुभूति के स्तर पर उसे क्रिएट कर रहे हैं। मित्र सोच कर देखिए, चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जैसे मान लीजिए आप कोई कहानी पढ़ते हैं, कहानी पढ़ी ही होगी आपने, नहीं पढ़ी होगी तो चलिए लोक जीवन में कहानियां सुनी होंगी, बचपन में सुनी होंगी, तोता मैना किसे लेकर के राजकुमारी और राजा रानियों की कहानियां सुनी होंगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने कहानियां ना सुनी हो। थोड़ा सा माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए, सूक्ष्मता के साथ थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि जब आप कहानी सुन रहे थे या जब आप कविता सुनते हैं, कवि सम्मेलनों में जाते हैं, या जब आप पेंटिंग देखते हैं, या जब आप छोड़िए सिनेमा ही देखते हैं, तो उस समय जब आप ये कर रहे होते हैं क्या आपके दिमाग में कुछ इमेजिनेशंस नहीं आते, क्या कुछ कल्पनाएं पैदा नहीं होती, क्या आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोचते हैं, जो दिखाया जा रहा है केवल उसी पर ही केंद्रित हो जाते हैं, बिल्कुल उससे जरा भी हिलते डुलते नहीं है? सोच कर देखिए, आपको लगेगा कि नहीं ऐसा तो नहीं होता है। जब मैं कहानी सुनता हूं, जैसे मान लीजिए कहानी में आपने सुना एक गांव का वर्णन हो रहा है, या एक राजा के महल का वर्णन हो रहा है, या एक राजकुमारी के सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, या तिलस्म कोई गुफा है, किला है, और आप सिर्फ सुन रहे हैं, आप पिक्चर के फॉर्मेट में उसे पर्दे पर नहीं देख रहे हैं, ना तो सिनेमा हॉल के बड़े स्क्रीन पर, और न ही अपने टीवी के छोटे स्क्रीन पर, और न ही अपने स्मार्टफोन के नन्हे स्क्रीन पर, इनमें नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ सुन रहे हैं। तो जब आप सुन रहे हैं तो आप क्या आपका जो दिमाग है वो तिलिस्म गुफा नहीं बना रहा है, क्या वो महल क्रिएट नहीं कर रहा है, क्या वो गांव के दृश्य को नहीं रच रहा है? रच रहा है ना, आपका दिमाग कुछ ना कुछ कर रहा है। तो ये जो रच रहा है ये कहां से आया है? ये आपके अपने दिमाग ने क्रिएट किया, ये कहीं से आया नहीं है, आपके अपने दिमाग का क्रिएशन है। तो कला ने क्या किया? कला ने केवल आपके दिमाग को उकसा दिया, जो अभी तक आपका दिमाग चुपचाप अपने में खोया हुआ था या कुछ और सोच रहा था, उसे उकसा कर, उसे उत्तेजित करके उसके हाथ में कोई चीज थमा दी कि लो अब तुम इसके बारे में सोचो, और वो ऑटोमेटिक सोचने लगा। देखिए, कल्पना करना भी कहीं ना कहीं सोचना ही होता है। ये बात अलग है कि विचार हम उसे कहते हैं जिसमें थोड़ी सी यथार्थता दिखाई दे कि हाँ इसे यथार्थ रूप दिया जा सकता है, ये रियल में है। कल्पना हम उसे कहते हैं जिसे रियल में उतारना थोड़ा सा मुश्किल होता है, अदरवाइज तो हम अपने जब जीवन के लिए कोई उद्देश्य चुनते हैं तो वो भी कल्पना में ही होती है। हम आप सब अपने बचपन में कल्पना करते हैं कि हम ये बनेंगे, तो ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं बन पाते, कुछ न कुछ बनी जाते हैं। ये बात अलग है कि हम 20 चीज बनने का फैसला करते हैं और उसमें से 2-3 चीजों के पीछे लग जाते हैं, उसमें से एक आध बन भी जाते हैं और बाकी हमारी कल्पनाएं बेकार हो जाती हैं। तो हमें लगता है कि जैसे कल्पना व्यर्थ चीज है, कल्पना व्यर्थ चीज नहीं है। कल्पना हमारे अंदर रचनात्मक शक्ति पैदा करती है। तो मित्रों, जब हम किसी भी कलाकृति की सराहना करते हैं, उसके प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, उससे जुड़ते हैं, तो देखिए कि हमारे अंदर की कितनी सारी चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। उसके बिना जुड़ाव होगा ही नहीं, मैं जुड़ाव की बात कर रहा हूं। पहला, कल्पना की बात मैंने की कि आपका दिमाग कल्पना लोक में चला जाता है। सोचिए कितनी खूबसूरत बात है, वर्तमान में से तो हम सब तो कहीं ना कहीं तो परेशान ही रहते हैं, तो कल्पना जगत में आप जाइए, इत्मीनान से कुछ देर के लिए आपको राहत मिल गई, आह मजा आ रहा है, चैन मिल रहा है, ये कला आपको देता है और आपके अपने दिमाग कल्पना के माध्यम से आपको उस जगत में पहुंचा देती है। दूसरा यह है कि जब हम कोई कलाकृति देखते हैं तो आप देखिए कि उसके साथ रोते हैं, उसके साथ हंसते हैं, उसके साथ मायूस हो जाते हैं, उसके साथ खुश हो जाते हैं, यानी कि वहां जो जो कुछ हो रहा है उसे हम सब अपनी अपनी अनुभूतियों के स्तर पर, संवेदनाओं के स्तर पर महसूस भी करते हैं, बिना मतलब के। हम जान रहे हैं कि सामने जो कुछ भी हो रहा है वो कहानी किस्सा है, झूठा है, इसके बावजूद हम उसे महसूस करते हैं। तो हमारी जो संवेदनाएं जो डल सी पड़ रही हैं, जो सूखी रूखी हो रही हैं, जो रेगिस्तान में तब्दील हो रही हैं, उसमें कम से कम पानी का छिड़काव तो हो गया, तो कितना मजा आता है। हमारी वो चीजें पुनर्जीवित हो रही हैं, हमारी संवेदनाएं जीवित बच रही हैं, हरी भरी हो रही हैं, उनमें पत्तियां आ रही हैं, अंकुर फूट रहे हैं। चलिए फूल और फल नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हरियाली का भी तो अपना महत्व होता है। तो ये हमारी अनुभूतियों को जीवित रखती है, हमारे इमोशंस को बचाकर रखती है और उसे बढ़ाती भी है। और जब तक इमोशंस और थॉट्स का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, हमारे जीवन में संतुलन नहीं आ सकता। और जब तक संतुलन नहीं होगा, असंतुलन का मतलब है बीमारी, सीधी सी बात है। चाहे हम मानसिक रूप से बीमार रहे, शारीरिक रूप से बीमार रहे, वैचारिक रूप से बीमार रहे, संवेदनात्मक रूप से बीमार रहे, जहां असंतुलन है वहां बीमारी है। तो हमें कितनी बड़ी बीमारी से मुक्ति दिलाता है दोस्तों। फिर मैंने कहा कि हम रचते हैं। देखिए सबसे बड़ा जो आनंद है, लोग पूछते हैं कि सबसे परमानंद किसमें है या किसमें सबसे बड़ा सुख मिलता है, इस पर आप लोग कभी डीपली सोचिएगा, गहनतापूर्वक विचार कीजिएगा, गहराई से विचार कीजिएगा, तो आपको लगेगा कि नहीं, जब हम कुछ भी रच लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं, तो हमें उसमें बहुत सुख मिलता है। इसीलिए आप देखिए कि बहुत से ऐसे कलाकार हैं भूखे मरते रहेंगे, बिचारों को उससे कोई आमदनी नहीं हो रही है, पत्नियां परेशान हैं कि ये कुछ कमा नहीं रहा है, लेकिन वो क्या करें, वो नाटक करने में लगे हुए हैं, वो चित्र बनाने में लगे हुए हैं, वो कुछ और काम करने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो जो रचनात्मकता का जो सुख है वो उन्हें महसूस हो रहा है। उन्हें दूसरा सुख चाहिए ही नहीं, उन्हें न अच्छे मकान का सुख चाहिए, न उन्हें गाड़ी का सुख चाहिए। हाँ, पेट मांगता है तो खाना जरूर चाहिए, बस वो मगन है। और इसका जो अंतिम बिंदु है मित्रों, वो है कि अगर आप कला प्रेमी हैं तो मान करके चलिए कि आप सौंदर्य की सराहना कर रहे हैं। देखिए कला चाहे जैसी भी हो, याद रखिए कि उसमें सौंदर्य होता है। देखने में कुरूप हो सकती है वो कला, उसका जो संदेश है वो भी कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं। जैसे मान लीजिए कोई युद्ध का भयावह चित्र बना दिया जाए, तो युद्ध के भयावह चित्र में आपको क्या दिखाई देगा, शव बिखरे पड़े हैं, हाथ कटा हुआ है, गर्दन कटी हुई है, खून बहरा, यही सब तो दिखाई देगा आपको उस पेंटिंग में, उस चित्र में। लेकिन इसके बावजूद, कुरूपता के बावजूद उसमें सौंदर्य है। सौंदर्य क्या है, क्रिएटिविटी का ब्यूटी है उसमें, क्रिएटिविटी की ब्यूटी है। तो आप उसे सराहते हैं कि अरे वाह क्या चित्र बनाया है, तो उसमें सौंदर्य होता है, कला में सौंदर्य होता है। और ये बताइए मुझे, आपकी सुंदरता देखनी किसको अच्छी नहीं लगती, भवन की सुंदरता हो, व्यक्ति की सुंदरता हो, प्रकृति की सुंदरता हो, हर कोई सुंदरता देखना चाहता है और सुंदर दिखाना भी चाहता है। हर कोई हम में से चाहता है कि हम सुंदर दिखें। तो सुंदरता की जो भावना होती है वो तो आदमी के मूल में होती है, उसकी इच्छा के केंद्र में होती है, और वह भावना आपको कलाओं के माध्यम से मिल रही है, उसकी पूर्ति हो रही है। तो आपको नहीं लगता है फ्रेंड्स कि बिना खर्च किए, बस थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, कितनी कमाल की चीज आपको मिल रही है, कितनी अमूल्य चीज आपको मिल रही है। तो मित्रों इसीलिए हमारे प्राचीन साहित्य में कहा गया है स्पष्ट रूप से, इसके लिए संस्कृत का श्लोक है कि जिस व्यक्ति में कला के प्रति प्रेम नहीं होता, सराहना नहीं होती है, वो एक तरीके से बिना पूंछ का ही पशु के समान है। कि मतलब पशु ही है, फर्क इतना ही है कि उसकी पूंछ नहीं है, बस ये हमारे संस्कृत के श्लोक में कहा गया है। तो मित्रों मैंने कला से जुड़ाव के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर की हैं, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का युग आ रहा है, मुझे ये हमारे सामने चुनौती और अधिक हो रही है कि कैसे हम अपने कला को बचा करके रख सके और कला के प्रति जो हमारी भावनाएं हैं उसे भी बचा कर रख सके। तो मित्रों अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा, आप सबसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार।